الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بیان کرنے سننے میں جس قدر اچھی نیت زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ. حصول ثواب آخرت رضا رب الانام جل جلالہ کے لیے بیان میں شریک رہوں گا، بیان کروں گا، سنوں گا. جو بات سمجھ میں نہ آئی دار الافتاء اہل سنت سے سمجھ لوں گا. صلو علی الحبیب سنو محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم وضو کرنے کی طرف تو جا رہے تھے، مگر وضو سے پہلے استنجا کیا جاتا ہے. کچھ مدنی پھول آپ کو بیان کیے جائیں گے اور کچھ مدنی پھول آپ کو پڑھنے پڑیں گے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو غیب کی خبر دیتے ہوئے غیب دان آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، اور کسی بڑی چیز میں یعنی جس سے بچنا دشوار ہو عذاب نہیں دیے جا رہے، بلکہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے آدھو آدھ چیرا اور ہر ایک کی قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا اور فرمایا، جب تک یہ خشک نہ ہو تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی. استنجا خانے میں جنات اور شیاطین رہتے ہیں، اگر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کی برکت سے وہ ستر نہ دیکھ سکیں گے. حدیث پاک میں ہے، جن یعنی جن جننی جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب پاخانے کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے، یعنی جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی اللہ عز و جل کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس کو دیکھ نہ سکیں گے. استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر پہلے الٹا قدم استنجا خانے میں رکھ کر داخل ہو، سر ڈھانپ کر استنجا کریں. ننگے سر استنجا خانے میں داخل ہونا ممنوع ہے، जब पेशाब करने या कदाए हाजत के लिए बैठे तो मुंह और पीठ दोनों में से कोई किबले की तरफ ना हो। अगर भूल कर किबले की तरफ मुंह या पुश्त कर कर बैठ गए तो याद आते ही फौरन किबले की तरफ से इस तरह रुख बदल दें कि कम से कम 45 डिग्री से बाहर हो जाए। इसमें उम्मीद है कि फौरन इसके लिए मगफिरत और बख्शिश फरमा दी जाए। इस्तिंजा खाने के WC के रुख वगैरह के ताल्लुक से मजीद कुछ वजाहत आपको की जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। बच्चों को भी किबले की तरफ मुंह या पीठ कर पेशाब या पखाना ना कराएं। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो गुनाहगार होगा। बिलखुसूस घर में हमारी जो इस्लामी बहनें होती हैं उसकी इनकी इस मामले में तरबियत होना जरूरी है। एक तो घर का जो WC है, घर का जो फव्वारा है, जो शावर है जिससे हम गुस्ल करते हैं, वो किबला रुख से अलग होना चाहिए, 45 डिग्री से अलग होना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों को जब इस्तिंजा कराए जाते, देखिए बच्चों को एक तो थोड़े से बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो इनको WC में ही इस्तिंजा कराया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को जहां पर भी होता है इस्तिंजा करा देते हैं, बिठा देते कमरे के अंदर पॉट वगैरह के जरिए। तो अब जब ये पॉट वगैरह का इस्तेमाल हो घर के अंदर तो वो किबला रुख नहीं होना चाहिए। अगर किबला रुख इस तरह किया जैसे खवातीन वगैरह इसका लिहाज रखती हो, या आप गौर कर ले, जरूरी नहीं कि जिसकी तवज्जो इस तरफ हो किबले की तरफ भी ऐसा हो जाता होगा, तो अब जो ऐसा करेगा गुनाहगार होगा। जब तक कजाए हाजत के लिए बैठने के करीब ना हो, कपड़ा बदन से ना हटाएं और ना ही जरूरत से ज्यादा बदन खोलें। फिर दोनों पांव जरा कुशादा कर बाई उल्टे पांव पर जोर देकर बैठे कि इस तरह बड़ी आंत खुलती है। किसी दीनी मसले पर गौर ना करे कि महरूमी का बाइस है। इस वक्त छींक, सलाम या अजान का जवाब जबान से ना दे। अगर खुद छींके तो जबान से अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे, दिल में कह ले, बातचीत ना करे। अच्छा, मैं कुछ बातें ये इस्तिंजा का तरीका रिसाले से तो मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन कुछ तसर्रुफ कुछ तब्दीली के साथ भी बयान करूंगा, नामुकम्मल भी बयान करूंगा, वो आपको पढ़नी होंगी। तो ये सारी बातें जो मैं यहां बयान करूं, जरूरी नहीं ये सारी रिसाले में इसी तरह लिखी हो। नीचे ना देखे, खामखा देर तक इस्तिंजा खाने में ना बैठे कि बवासीर होने का अंदेशा है। ना थूके, ना नाक साफ करे, ना बिला जरूरत खंकारे इस्तिंजा के दौरान। ना बार बार इधर उधर देखे, ना आसमान की तरफ निगाह करे, बल्कि शर्म के साथ सर झुकाए। इस्तिंजा का जो तरीका है, असल जो पानी से इस्तिंजा करने का तरीका, इस्तिंजा दो तरह से किया जाता है, एक ढेलों से और एक पानी से। हां, अलबत्ता बाज सूरतों में पानी से इस्तिंजा करना फर्ज हो जाता है, अलबत्ता डेलों से सुन्नत ही रहता है। तो पानी से इस्तिंजा का तरीका ये सफा नंबर 4 इस्तिंजा का तरीका से पढ़ लीजिए। उंगलियों की भी इसमें तरकीब होती है, छोटी, फिर उससे ऊपर 5 उंगलियों में से आखिरी 3 उंगलियों में से एक छोटी, उसके ऊपर बड़ी, उसके ऊपर बीच वाली, इस तरह। और पेट का इस्तेमाल नीचे की जानिब से, ये तफसील यहां पर मौजूद है। ये इस्तिंजा का तरीका में इसे देख लिया जाए। और अच्छी तरीके से पानी से इस्तिंजा करना चाहिए। रोजेदार के हवाले से कुछ मामलात में, कुछ मसाइल में फर्क आता है। एक तो यही, जैसे इस्तिंजा का तरीका है, एक तो आपने इस्तिंजा का तरीका सफा 4 से इसको पढ़ना है, चाहे तो लिख ले, दूसरा कुछ और चीजें भी लिख ले। बहारे शरीयत जिल अव्वल सफा 410 पर भी ये तरीका लिखा है। ये इस्तिंजा का बयान, आप इस्तिंजा का बयान हिस्सा 2 बहारे शरीयत में इसको देख सकेंगे। इसी जिल्द के सफा 412 पर मसला नंबर 25, 26, 27 बाजों के लिए हथेली का इस्तेमाल भी है, तो ये वहां से आप तफसील पढ़ सकेंगे इस्तिंजा के लिए। पहले हम इस्तिंजा करेंगे किस अंदाज से, कहां से इब्तिदा करेंगे और क्या क्या उसकी सूरतें होंगी, वो सारा बयान इसके अंदर मौजूद है। सफाई बहुत अच्छी चीज है, अच्छे अंदाज से सारी चीज होनी चाहिए। मुबालगा भी इसको कहते हैं। बाज सूरतें ऐसी हैं कि मुबालगा करने से रोजा ही टूट जाएगा। बहारे शरीयत जिल्द अव्वल सफा 987 मसला नंबर 7 पर ये लिखे हुए हैं। मैं इसका एक हल आपको एहतियात का बयान कर देता हूं। और इसी तरह रोजे में एहतियात भी होनी चाहिए। मसला ये भी पढ़ लीजिए, मसला नंबर 17 988 सफा नंबर, और इसके आखिर में यह है कि फुकाए किराम रहिमहुल्लाह सलाम फरमाते हैं, रोजादार इस्तिंजा करने में सांस ना ले। जैसे कुल्ली है, हमें रोजे में कुल्ली करने में एहतियात करनी होती है, रोजे में नाक में पानी चढ़ाने में एहतियात करनी होती है कि पानी का ताल्लुक अंदर जिस्म तक पानी की रसाई ना हो सके, इसी तरह इस्तिंजा करने में भी ये एहतियात करनी होगी। और इसका तरीका बहुत प्यारा तरीका है, यानी रोजा नहीं है तो सांस का दबाव नीचे की तरफ करें। देखिए सांस लेते हैं बंदा, ये अंदर गया ना, हवा अंदर गई तो अब ये बंदा दबाव नीचे की तरफ लेगा। जब हवा बाहर निकाल रहे होते हैं तो दबाव नीचे नहीं होता, दबाव ऊपर की तरफ आ जाता है। तो सांस लेते हुए दबाव जो होता है वो नीचे की तरफ आता है। अब ये नीचे की तरफ दबाव है, इस दबाव को रखना है आम हालत में। और जब हमने रोजे की हालत के अंदर है तो रोजे के अंदर हुक्म यह है कि ये फुकाए किराम रहिमहुल्लाह सलाम फरमाते हैं, रोजादार इस्तिंजा करने में सांस ना ले। देखिए बाज चीजें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी और समझनी भी पड़ेंगी। बाज चीजें ऐसी होती हैं, बाज मसाइले शरईया ऐसे होते हैं कि जब तक उसका तजरिबा ना किया जाए, मश्क ना की जाए, बंदों को नहीं आते। अल्फाज से समझने से हर बात आ जाती तो आपको किताब दे दे और आप जहाज उड़ा रहे होते कि हमने अल्फाज पढ़ लिए। जहाज उड़ाने के लिए जब आप जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे एयरपोर्ट वाले कि आप जहाज में खादिम की हैसियत से भी काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो किताब से पढ़ लेना एक अलग चीज है, किसी चीज को सुन लेना एक अलग चीज है। कई शरई मसाइल मश्क के बगैर आते ही नहीं है। अब बाज बातें हमें समझने में अल्फाज जो होते हैं, ये भाई अल्फाज समझ में आ रहे हैं, आवाज आ रही है कि अल्फाज बयान किए जा रहे हैं, लेकिन अल्फाज समझ में आने के साथ मश्क की भी जरूरत है। तो ये अहम तरीन मामला है कि सांस रोक कर रोजादार इस्तिंजा करे ताकि इसके दाखिली जिस्म के अंदर से ये अपनी हिफाजत कर सके। कुल्ली में भी एहतियात है, नाक के पानी चढ़ाने में भी रोजादार के लिए एहतियात है, इसके अलावा इस्तिंजा करने की भी इसके लिए एहतियात है। इसका तरीका आपने कहां से पढ़ना है, कम से कम यहां से पढ़ लीजिए। इस्लामी बहनें बिलखसूस बाहर शरीयत से इस्लामी बहनों को देख लेना चाहिए। तो इस तरह ये मामला है कि ये चीजें मश्क के साथ आ सकेंगी, इसके अलावा सही तौर पर समझ में नहीं आएंगे। और ये बात यही है, इसको बार बार पढ़ता जाए, मश्क करता जाए, तजर्बेकार आदमी से समझता जाए तो ये काम करने की सूरत बन सकेगी। अलबत्ता बाज ऐसे मुबालगे, इतने बेतहाशा पानी का इस्तेमाल रोजे में करना और उसकी सूरत लिखी है कि किस अंदाज से करना, ये रोजे भी बाज सूरतें ऐसी हैं जिससे रोजा भी टूट सकता है इस्तिंजा करते वक्त। तो ये चीजें एहतियात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। طہارت حاصل ہونے کے بعد ہاتھ بھی پاک ہو گئے لیکن بعد میں صابن وغیرہ سے بھی دھو لے. جب استنجا خانے سے نکلے تو پہلے سیدھا قدم باہر نکالے اور باہر نکالنے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. یعنی اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت یعنی راحت بخشی. تو یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے کہ اس نے کھلایا بھی اور انسان کے پیٹ سے ایکسٹرا چیزیں باہر بھی ہو گئیں. بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں یہ دعا بھی ملا دیجئے، اس طرح دو حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. غفرانک یعنی شروع میں یہ کہہ لے غفرانک، پھر الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی کہے. ترجمہ، میں اللہ تعالی سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. زمزم شریف سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور ڈھیلا نہ لیا ہو تو ناجائز. طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. بعض لوگ جو اس کو پھینک دیتے ہیں یہ نہ چاہیے، اسراف میں داخل ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کے استنجے خانے کا رخ غلط ہے یعنی بیٹھتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹ ہوتی ہے تو اس کو درست کرنے کی فوراً ترکیب کیجئے، مگر یہ ذہن رہے کہ معمولی سا ترچھا کرنا کافی نہیں، ڈبلیو سی اس طرح ہو کہ بیٹھتے وقت منہ یا پیٹ قبلے سے 45 ڈگری کے باہر رہے. آسانی اس میں کہ قبلے سے 90 ڈگری پر رخ رکھیے، یعنی نماز کے دونوں بار سلام پھیرنے میں جس طرف منہ کرتے ہیں ان دونوں سمتوں میں سے کسی ایک جانب ڈبلیو سی کا رخ کریں. سلام ہمارے ہاں بعض تو بالکل ادھورا کرتے، پورا سلام کے منہ پھر گیا، کندھا جیسے جس سائڈ پر ہے یہ مراد ہے. یعنی قبلہ یوں ہے تو آپ کا جو ڈبلیو سی وغیرہ ہے وہ یوں سے 45 تک نہیں ہوگا، یہاں سے بھی 45 تک نہیں ہوگا، بلکہ دو طرف 45 سے باہر ہوگا. آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ سناتے ہیں دکھاتے ہیں. زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ ڈبلیو سی قبلے سے 90 کے درجے پر یعنی نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے کے رخ کر لیجیے. معمار عموماً تعمیراتی سہولیات اور خوبصورتی کا لحاظ کرتے ہیں، آداب قبلہ کی پرواہ نہیں کرتے. مسلمانوں کو مکان کے غیر واجبی بہتری کے بجائے آخرت کی حقیقی بہتری پر نظر رکھنی چاہیے. یاد رکھیے کہ پورا جو گول دائرہ ہوتا ہے اس میں 360 ڈگری ہوتی ہے. اب 360 ڈگری میں سے کس ڈگری کی طرف بیٹھ کر استنجا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، آپ کو گرافکس کے ذریعے یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ڈبلیو سی ہے اور یہ ریڈ اینگل بتا رہا ہے کہ اس رخ کرنے والے کو یہاں تک نہیں کرنا، رکے 45 ڈگری، قبلہ رخ سے 45 ڈگری تک. اب مجھے ایک نظر اگر آپ دیکھیں، یہ آپ کا جو گول دائرہ ہے دونوں طرف سے ملا کر 360 ہے، یہ ہاف جو آپ کا ڈی بنتا ہے یہ 180 بنتا ہے، اور آپ اس کو ہاف کریں گے یہ بنے گا 90 کا ہاف کریں گے یہ بنے گا 45، یہاں کا 45 اور یہاں کا 45. یہ دونوں رخ ایسے ہیں کہ اگر قبلہ یہاں پر سیدھ میں ہے تو اس پورے 90 کے اینگل پہ استنجا نہیں کیا جا سکتا. اب دکھائیے مزید. اب یہ اینگل جو آپ کے سامنے بن رہا ہے وہ بظاہر 45-45 شو کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ اس وقت چار جانب سے 90 کے اینگل بن گئے. دو 90 کے اینگل ایسے ہیں کہ جن کی طرف قبلہ رخ ہونا ثابت ہوتا ہے، استنجا کرنا درست نہیں ہوتا،
और दो एंगल ऐसे हैं जिनकी तरफ इस्तिंजा दुरुस्त है। अब हम आपको इसका फाइनल जो शेप है वो दिखा रहे हैं, जिससे आपको ज्यादा तौर पर ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि किस तरह इस्तिंजा करना गलत और किस तरह इस्तिंजा करना दुरुस्त है। ये इस वक्त आपको बिल्कुल किबला रुख दिखाया जा रहा है। जी ये फाइनल एंगल है, यानी आप ये समझे ये वो पॉइंट है जो बिल्कुल नेट किबले की तरफ है। अब 45 डिग्री राइट साइड, 45 डिग्री लेफ्ट साइड, 45 दर्जे सीधी तरफ, 45 दर्जे उल्टी तरफ, इस हिस्से में इस्तिंजा करना जायज नहीं है। अब जब आप इस 45 के दायरे से बाहर आ जाते हैं तो ये 45 दायरा और ये 45 दायरा, यानी ये 90 का एंगल और ये वाला 90 का एंगल ऐसा एंगल है कि जिसकी तरफ आप इस्तिंजा कर सकते हैं, यहां करने में इस्तिंजा इस रुख पे करने में कोई मुजायका नहीं। किबले को सीना हो या पीठ हो और इस हालत में इस्तिंजा किया जाए तो ये जायज नहीं है। या ज़िमनन एक और मसला भी मैं आपको बयान करूं, नमाज के अंदर 45 दर्जे तक अगर नमाजी इनका रुख हो तो वो नमाज हो जाती है। किबला रुख से सीधी तरफ 45 दर्जा, उल्टी तरफ 45 दर्जा, इन दो 45 दर्जों की तरफ अगर हमने नमाज पढ़ ली, नमाज हो जाएगी। तो जिस रुख पे नमाज हो जाएगी उस रुख पे इस्तिंजा करने की इजाजत नहीं है। ये ममनू सूरत है, ये जायज नहीं है इस्तिंजा इस तरफ करना, और गुस्ल भी इस रुख पर नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट है हमारा। तो अब हमारी WC का रुख इस साइड पर हो या इस साइड पर हो, यानी मुंह इस तरफ हो या मुंह इस तरफ हो, पीठ इस तरफ हो या पीठ इस तरफ हो, इसी तरह शावर का रुख इस तरफ हो या इस तरफ हो, पूरे 90 डिग्री के एंगल पर बन जाए। जैसे नमाज के अंदर, क्योंकि नमाज का ये रुख बनेगा, नमाज में जिस तरफ सलाम फेरते हैं उसका रुख, ये रुख अगर होगा तो उस पर आपके इस्तिंजा खानों का रुख और शावर का रुख होगा तो ये बहुत ज्यादा एहतियात वाली बात है। अलबत्ता अगर किसी का 46 डिग्री पर भी हो, आप खुद समझे 46 डिग्री कितना नाजुक है कि एक तो आपने बिल्कुल नेट किबला रुख लिया है, बिल्कुल नेट किबला रुख लिया है, और उसके बाद आपने एंगल भी बिल्कुल नेट चेक किया है, अब जाकर 46 रुख पर WC है और आप बिल्कुल नेट उस WC पर बैठकर आपने सिंजा किया है, उसमें भी आपकी बॉडी का भी कुछ आगे पीछे नहीं हुआ तो अब दुरुस्त होगा। तो इतनी सारी एहतियातों में पढ़ने से बेहतर यह है कि 90 का एंगल कर लिया जाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
इस्तिंजा के ताल्लुक से जो मदनी फूल है वो समाअत फरमाइए। हदीस पाक में बिल में पेशाब करने से मना किया गया है, इसी तरह हम्माम में पेशाब करना। सरकार मदीना मुनव्वरा सुल्तान मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गुस्ल खाने में पेशाब ना करे फिर इसमें नहाए या वुजू करे कि अक्सर वसवसे इससे होते हैं। मुफस्सिर शहीर अकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अली रहमतुल्लाह रहमान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि अगर गुस्ल खाने की जमीन पुख्ता हो और इसमें पानी खारिज होने की नाली भी हो तो वहां पेशाब करने में हरज नहीं, अगरचे बेहतर है कि ना करे, लेकिन अगर जमीन कच्ची हुई और पानी निकलने का रास्ता भी ना हो तो पेशाब करना सख्त बुरा है कि जमीन नजिस हो जाएगी और वुजू या गुस्ल में गंदा पानी जिस्म पर पड़ेगा। यहां दूसरी सूरत मुराद है, इसीलिए ताकीदी ममानअत फरमाई गई, यानी इससे वसवसे और वहम की बीमारी पैदा होती है जैसा कि तजर्बा है, या गंदी छींटे पड़ने में वसवसा रहेगा। ढेलों से भी इस्तिंजा किया जाता है, इसके अहकाम सफा नंबर 8 पर हैं। अगर सिर्फ पानी ही से तहारत कर ली जाए तो भी जायज है, मगर मुस्तहब यह है कि ढेले लेने के बाद पानी से तहारत करे। मिट्टी का ढेला लेने के की हिकमत व फवाइद सफा नंबर 10 पर। और एक मौजू यहां पर यह भी लिखा है, सुन्नत के मुताबिक कदा आदत करने में आखिरत की सआदत और दुनिया में बीमारियों से हिफाजत है। कुफार भी इस्लामी अतवार को खाही ना खाही इसकी अहमियत का इकरार करते ही हैं। इसकी एक झलक इस हिकायत में मुलाजा हो। चुनाचे फिजियोलॉजी के एक सीनियर प्रोफेसर का बयान है, मैं उन दिनों मराकेश में था, मुझे बुखार आ गया। दवा के लिए एक गैर मुस्लिम डॉक्टर के पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? मैंने कहा, हां मुसलमान हूं और पाकिस्तानी हूं। यह सुनकर कहने लगा, अगर तुम्हारे पाकिस्तान में एक तरीका जो खुद तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है जिंदा हो जाए तो पाकिस्तानी बहुत सारे अमराज से बच जाए। मैंने हैरत से पूछा, वो कौन सा तरीका? बोला, अगर कजाए हाजत के लिए इस्लामी तरीके पर बैठते हुए उल्टे पैर पर जोर देकर बैठे तो दायमी कब्ज, बवासीर और गुर्दे के अमराज नहीं होंगे। इस तरीके के बारे में हजरत सैयदना सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें ताजदार रिसालत सरापा अज़मत व शराफत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम रफ़े हाजत के वक्त बाईं यानी उल्टे पांव पर जोर दें और दाईं पांव खड़ा रखें। इस अंदाज से बड़ी आंत जो उल्टी तरफ होती है वो उसका मुंह खुल जाता है और आसानी रहती है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूर तशरीफ ले जाया करते। आजकल बिलखुसूस शहरों में बंद कमरे के अंदर ही बेतुल खला अटैच बात होते हैं, जो कि जरासीम की नशो नुमा और उनके जरिए फैलने वाले अमराज के जराए भी हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम पानी का भी इस्तेमाल ज्यादा करें और इसकी सफाई का एहतमाम भी रखे। बेतुल खला जाने की 47 निज्जत है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुसलमान की नियत इसके अमल से बेहतर है। सर ढांप कर जाने में उल्टे पांव से और बाहर निकलने में सीधे पांव से पहल कर इत्तिबाए सुन्नत करूंगा। दोनों बार यानी दाखिले से कबल और निकलने के बाद मसनून दुआएं पढ़ूंगा। सिर्फ अंधेरे की सूरत में ये नियत कीजिए, तहारत पर मदद हासिल करने के लिए बत्ती जलाऊंगा। फरागत के फौरन बाद इसराफ से बचने की नियत से बत्ती बुझा दूंगा। हदीस पाक में है, अत्तुहुरु शत्रुल ईमान, यानी पाकी निस्फ ईमान है, पर अमल करते हुए पांव को गंदगी से बचाने के लिए चप्पल पहनूंगा। पहनते हुए सीधा कदम और उतारते हुए उल्टे से पहल कर इत्तिबाए सुन्नत करूंगा। सत्र खुला होने की सूरत में इस्तिकबाले किबला यानी किबले की तरफ मुंह करने और इस्तिदबार यानी किबले की तरफ पीठ करने से बचूंगा। या ये मसला समाप्त करें, हमारे यहां एक तादाद ऐसी भी पाई जाती है जो इस्तिंजा करते वक्त ये तो जहन मनाती है कि इस्तिंजा करते वक्त पीठ नहीं कर सकते किबले की तरफ, मुंह कर देते, WC भी इसी तरह बनाते वगैरह वगैरह। तो ये याद रखिए कि ये जो इस्तिंजा का मसला है वो 45 डिग्री का जो भी मसला आपको बयान हुआ है ये सीना करने का भी है और पुश्त करने का भी है। तो ये मसला सिर्फ मुंह करने का नहीं है कि आप किबला रुख मुंह कर इस्तिंजा कर रहे हैं या 45 डिग्री के अंदर अंदर कर रहे हैं, बल्कि अगर आपकी पीठ का भी यही मामला है तब भी इसको करने की शरअन इस तरह इस्तिंजा करने की इजाजत नहीं है। زمین سے قریب ہو کر فقط حسب ضرورت سطر کھولوں گا، اسی طرح فارغ ہونے کے بعد اٹھنے سے قبل ہی سطر چھپاؤں گا، جو کچھ خارج ہوگا اس کی طرف نہیں دیکھوں گا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچوں گا، حیا سے سر جھکائے ضرورتاً آنکھیں بند کر لوں گا۔ پانی سے طہارت کرتے وقت صرف الٹا ہاتھ استعمال کروں گا، شرعی مسائل پر غور نہیں کروں گا کہ استنجا خانے میں استنجا کرتے وقت شرعی مسائل پر غور و خوض کرنا باعث محرومی ہے۔ سطر کھلا ہونے کی صورت میں بات چیت نہیں کروں گا، پیشاب وغیرہ میں نہ تھوکوں گا نہ ہی ناک سنکوں گا۔ اگر فوراً حمام ہی میں وضو کرنا ہوا تو طہارت والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے دونوں ہاتھ دھوؤں گا، پانی سے استنجا کرنے کے بعد پاؤں کے ٹخنے والے حصے احتیاط کے ساتھ دھوؤں گا، کیونکہ اس موقع پر عموماً ٹخنوں کی طرف گندے پانی کے چھینٹے آ جاتے ہیں۔ فراغ ہو کر جلدی نکلوں گا، بے پردگی سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کا دروازہ بند کروں گا، مسلمانوں کو گھن سے بچانے کے لیے بعد فراغت دروازہ بند کر دوں گا۔ اس میں نیتیں بھی اور بہت سے احکام بھی جانے جا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں۔ عوامی استنجا خانے میں جاتے وقت یہ نیتیں بھی کیجئے، اگر لائن لمبی ہوئی تو صبر کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کروں گا، کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا، بار بار دروازہ بجا کر اس کو ایذا نہیں دوں گا، اگر میرے اندر ہوتے ہوئے کسی نے بار بار دروازہ بجایا تو صبر کروں گا، اگر کسی کو مجھ سے زیادہ حاجت ہوئی اور کوئی سخت مجبوری یا نماز فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہوا تو ایثار کروں گا، حتی الامکان بھیڑ کے وقت استنجا خانے جا کر بھیڑ میں مزید اضافہ کر کر مسلمانوں پر بوجھ نہیں بنوں گا، در و دیوار پر کچھ نہیں لکھوں گا، وہاں بنی ہوئی فحش تصویریں دیکھ کر اور حیا سوز تحریریں پڑھ کر اپنی آنکھوں کو بروز قیامت اپنے خلاف گواہ نہیں بناؤں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔